पुस्तक सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करना, लेखक रॉबर्ट प्रकाश। अध्याय 4, अनुग्रह का सुसमाचार। दर्द से कराहते हुए जयप्रीत ने अपने पति से कहा, अब मुझसे और सहन नहीं होता, हमें चंडीगढ़ में इलाज के लिए जाना चाहिए। उसे पता था कि ऑपरेशन का खर्चा उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ साबित होगा, इसलिए वह हर दिन दर्द को सहती रही और समस्या इतनी अधिक बढ़ गई कि 5 साल तक उसका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और वह अपने बच्चों और परिवार की देखभाल करने लायक भी नहीं रही। यह सब देखकर उसके पति ने उसका ऑपरेशन कराने का जोखिम लेने का फैसला किया। पति को लगता था कि शायद ऑपरेशन कराने पर वह ठीक हो जाए या फिर किसी चमत्कार की आस या उम्मीद ही बाकी बची थी। जयप्रीत महज 30 से 32 साल की थी, फिर भी गठिया रोग के कारण जब वह चलती थी तो 90 साल की बुजुर्ग महिला की तरह चलती थी। चलते समय जयप्रीत की रीढ़ की हड्डी पर बहुत अधिक दबाव पड़ता था, जिसके कारण उसे और भी कई समस्याएं शरीर में होने लगी थीं। उसे हर समय दर्द बना रहता था, चलने में बहुत परेशानी होती थी और वह घर का या फिर अपना कोई भी काम नहीं कर पाती थी। वे लोग गाँव के रहने वाले और आर्थिक रूप से गरीब थे। उन्होंने स्थानीय अस्पतालों के कई चक्कर लगाए, परंतु वहां से उन्हें लौटा दिया गया क्योंकि उसका इलाज और ऑपरेशन जोखिम भरा था। उसके ऑपरेशन का खर्च भी बहुत था और उस जगह पर इस प्रकार के ऑपरेशन को कराने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं था। आखिरकार वे चंडीगढ़ के सबसे अच्छे अस्पताल में गए। डॉक्टर ने बताया कि उसका ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा होगा क्योंकि रीढ़ की हड्डी में आगे की ओर दबाव पड़ रहा था। ऑपरेशन का खर्च उनके अनुमान से कहीं अधिक था। वे यह सोचते हुए इतना अधिक खर्चा करके इतना बड़ा जोखिम लेना सही होगा या नहीं, अपने गांव वापस लौटे। अब उन्हें सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद थी। इस दौरान मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। मेरे मित्र हरपाल वहां पर गांव में एक कलीसिया चलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए हम लोग चाय पी रहे थे। इस दौरान जयप्रीत को लेकर उसका पति वहां आया, साथ में उनका बेटा भी था। पास्टर हरपाल से जयप्रीत ने पंजाबी में कहा कि उसने सुना है कि आप लोग बीमारों और समस्याग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, इस कारण मैं भी प्रार्थना करवाने के लिए आपके पास आई हूँ। मुझे ध्यान आया कि किस प्रकार से धीरे धीरे चल कर वो आई है। पास्टर हरपाल ने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। मुस्कुराते हुए मैंने बड़े विश्वास के साथ उससे कहा कि इसी समय यीशु तुम्हें इस बीमारी से चंगा और स्वस्थ करने जा रहा है। उसे मेरी कही बात का जरा भी यकीन और विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने हाथ को उसके पीठ पर रखा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित किया। मैंने जीवन और चंगाई का आह्वान किया और उसके रीढ़ की हड्डी को ठीक हो जाने का आदेश दिया। मैंने उसे निर्देश दिया, अपने जिस्म को परखो, जांचो, चलकर उधर जाओ और फिर वापस आओ। उसने मेरे कहे अनुसार किया। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था, वह आसानी से आज़ादी से चल पा रही थी। उसने बताया कि चुभन वाला तीखा दर्द जो उसकी रीढ़ की हड्डी में होता था वह चला गया है। साइटिका का दर्द जो उसके कूल्हे और पैरों में पीड़ा पहुंचाता था वह भी चला गया था, परंतु उसकी रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियों में अभी भी तनाव और दर्द था। हमने फिर से प्रार्थना की और तुरंत उसकी मांसपेशियों में उसे आराम और राहत मिली। मैंने फिर से उसे चलाया और इस बार वह बिल्कुल भी किसी प्रकार का दर्द या परेशानी महसूस नहीं कर रही थी। वह आसानी से और बिना दर्द महसूस किए हुए चल फिर पा रही थी और झुक भी पा रही थी। आनंद के साथ पास्टर हरपाल ने उन्हें सुसमाचार सुनाया और उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने अपने सिरों को यीशु के सामने झुकाया और उस पर विश्वास किया जो कि चंगाई देता है और उसके लंबे समय से चले आ रहे दर्द को गायब किया। अब वे सब लगातार कलीसिया में संगति करते हैं और जयप्रीत के कई रिश्तेदार भी प्रभु में आए हैं। अनुग्रह को परिभाषित करना। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसको प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेरितों के काम 20:24। दोस्तों, सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है। आगे बढ़ने से पहले हमें अनुग्रह को परिभाषित करने की ज़रूरत है। एक क्षण रुकें और अनुग्रह की अपनी परिभाषा को सोचें। अनुग्रह क्या है? यदि आप धर्म विज्ञानियों से पूछें तो ज़्यादातर का जवाब यह होगा कि अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा हम पर किया गया वह उपकार एहसान है जिसके योग्य हम नहीं थे। हालांकि यह एक अच्छा जवाब है, परंतु मैं अनुग्रह को अपने शब्दों में परिभाषित करना चाहूँगा ताकि मैं और अन्य लोग अनुग्रह को और बेहतर और पूरी तरह से समझ सकें। अनुग्रह परमेश्वर का वह प्रेम और भलाई है जो कि बुरे और अयोग्य और नाकाबिल लोगों को मुफ्त में प्राप्त हुआ है। अनुग्रह अयोग्य लोगों को किया गया परमेश्वर का प्रेम और उसके लिए परमेश्वर के द्वारा की गई भलाई है। अनुग्रह मुफ्त में और बिना किसी शर्त के प्राप्त हुआ है। यदि इसमें जरा सी भी कोई शर्त होती तो यह मुफ्त ना होता और ना ही अनुग्रह कहलाता। यदि आप इसके योग्य हैं तो जो आपने प्राप्त किया है वह अनुग्रह नहीं है परंतु एक पुरस्कार इनाम है। यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व की छाप है, इब्रानियों 1:3 और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, कुलिसियों 1:15। उसका हर एक शब्द, आचरण और कार्य पिता को सिद्धता पूर्णता में प्रकट करता है, यूहन्ना 5:19-20, 14:9-10। परमेश्वर का वचन यीशु का किस प्रकार से वर्णन करता है, और वचन देहदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, यूहन्ना 1:14। सुसमाचार को समझना हमारी समझ से परे है। इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर कितना अधिक भला है हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। यीशु अनुग्रह से परिपूर्ण है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, यूहन्ना 1:16। यीशु प्रेम, भलाई और दया से भरकर उमड़ रहा है। उसके उमड़ने के कारण हमें एक चीज प्राप्त हुई है और वह है अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर का वचन यहाँ पर परमेश्वर के कोप, क्रोध, रोष, न्याय, नाराजगी और प्रतिकार की बात नहीं करता है। सुसमाचार परमेश्वर के उस बेशुमार प्रेम और भलाई के विषय में है जो कि उसने बिना किसी शर्त के बुरे और पापी मनुष्य पर प्रकट किया। वाचाओं के मध्य भिन्नता। दोस्तों, ज्यादातर विश्वासियों के मसीही जीवन में जिस समस्या का सामना उन्हें अक्सर करना पड़ता है वह है परमेश्वर के सुसमाचार और बाइबिल को लेकर उनकी गलतफहमी। यह समस्या है इस कारण है क्योंकि उन्हें पुरानी और नई वाचा में भिन्नता या भेद पाने की शिक्षा नहीं दी गई। इस कारण वे दोनों वाचाओं में भिन्नता नहीं कर पाते। वाचाओं में भिन्नता न कर पाने के कारण सुसमाचार उनके लिए अनुग्रह से रिक्त, खाली साबित होता है, जैसे कि प्रेरित पौलुस ने चेतावनी दी है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हे निर्बुद्धियों, गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुम में आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर प्रारंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? गलातियों 1:6-7, 3:1-3। जब भी व्यवस्था पुरानी वाचा को सुसमाचार के साथ मिला दिया जाता है तो वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य और परमेश्वर की सामर्थ निष्प्रभावी बन जाती है और वहां पर विधि समस्त मसीही उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त वचन के पदों में प्रेरित पौलुस गलतियों की कलीसियाओं को उस विधि समस्त यहूदियों के बारे में सचेत कर रहे हैं जो कि यीशु मसीह का प्रचार व्यवस्था की शर्त पर करते हैं। मित्रों, ध्यान दें और सोचें कि आप किन बातों पर विश्वास करते हैं। नीचे चार्ट में व्यवस्था और अनुग्रह की तुलना की गई है। व्यवस्था, पुरानी वाचा मूसा के द्वारा स्थापित, अस्थाई, परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध मनुष्य के कार्य पर आधारित होता है। मनुष्य को परमेश्वर के समक्ष धर्मी नहीं बना सकती। शैतान और दुष्ट आत्माओं का सामना करने की मनुष्य में क्षमता या काबिलियत नहीं है। मनुष्य न्याय के भय और सजा के डर के कारण पश्चाताप करता है। अनुग्रह की तरफ, अनुग्रह, नई वाचा यीशु के द्वारा स्थापित, अनंत, परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के विश्वास पर आधारित होता है। यीशु ने मनुष्य को धर्मी बनाकर परमेश्वर के समक्ष खड़ा किया है। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने अंधकार को हरा दिया और हमें अंधकार और शैतान की शक्तियों पर अधिकार दिया है। परमेश्वर के प्रेम और भलाई के कारण मनुष्य मन फिराता या पश्चाताप करता है। रोमियो 2:4। आइए हम पुरानी और नई वाचाओं की भिन्नता पर ध्यान दें और ध्यान दें कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की भलाई को ग्रहण करने का निर्देश देता है। हमारा पहला उदाहरण है ईश्वरीय चंगाई, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई शारीरिक चंगाई। दूसरा है पापों की क्षमा और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। लूका 6:17-19। दोस्तों, आप पुराने नियम के वायदे को लेकर उसे लागू करने की कोशिश करके नाकाम होकर बीमारी और रोग से अपनी जान गंवा सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव मेरी प्रिय माँ के मामले में रहा। मेरी माँ की जांच कराने के बाद पता चला कि उन्हें गर्भाशय का कैंसर है जो कि स्टेज 3 में पहुँच चुका है। उन दिनों में मैं चंगाई और चमत्कारों को अपने जीवन में लगातार होते हुए अनुभव कर रहा था, लेकिन मुझे उन दिनों अनुग्रह के बुनियादी सिद्धांत और बातों के बारे में अधिक पता नहीं था। एक शाम मैं अपनी माँ के साथ बैठा और मैंने उससे यह कहा, ठीक है मम्मी, अब हम बाइबल में से चंगाई से संबंधित पदों को खोजेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। हम निर्गमन की पुस्तक में से शुरू करेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने पहली बार चंगाई देने वाले के रूप में स्वयं को प्रकट किया है। मैंने निर्गमन 15:26 को खोला और अपनी माँ से धीरे धीरे पढ़ने को कहा। पढ़ने के बाद मैंने उस वचन के बारे में सोच विचार और मनन करने का उन्हें काफ़ी समय दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, तो फिर मम्मी, वचन के इन पदों के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? मेरी माँ चुप रही जबकि उनकी आँखें आंसुओं से भर आई थीं। आंसुओं की धार बह निकली जबकि उन्होंने दिल से खेद प्रकट करते हुए धीरे से कहा, मैंने वचन के इन पदों का कभी भी पालन नहीं किया और ना ही कभी मैं इन पदों का पालन कर सकूंगी। परमेश्वर के वचन की शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहने पर और अपनी चरम बीमारी पर वह फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, यहाँ पर निर्गमन 15:26 में ना ही यीशु के जीवन, मृत्यु और जैवंत पुनरुत्थान का वर्णन है और ना ही उसके अनुग्रह का यहाँ पर हमें कुछ वर्णन मिलता है। चंगाई का पहला वादा बहुत सी शर्तों और मांगों से भरा हुआ है। आप चंगाई के बारे में सब कुछ सीख समझ सकते हैं, परंतु अनुग्रह की वह कुंजी है जो कि परमेश्वर की चंगाई देने वाली सामर्थ को खोलती है। मैं पीछे मुड़कर अतीत के दिनों में देखने पर यह समझ पाया हूँ कि यदि आप पुराने नियम की व्याख्या यीशु के लिए बिना करेंगे तो आप अवश्य ही नाकाम हो जाएंगे। अब मैं निर्गमन 15:26 की व्याख्या इस बात को जानकर कर सकता हूँ कि यीशु मेरे स्थान पर आया और उसने परमेश्वर की वाणी को ध्यानपूर्वक और तन मन से सुना। उसने वह सब जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही मेरे लिए किया और उसने परमेश्वर की सभी विधियों का पालन किया और उसके अनुग्रह के कारण परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है। दोस्तों, यीशु ने सभी शर्तों और मांगों को पूरा किया है। इसी कारण परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं और वादे यीशु में हाँ के साथ हैं। 2 कुरिन्थियों 1:20। लेकिन उन शुरुआती दिनों में मैं अपनी माँ पर यीशु को सही तरह से प्रकट कर पाने में नाकाम रहा। मैंने व्यवस्था को सुसमाचार के साथ मिलाकर परमेश्वर के प्रति उसके नज़रिए को विषम बना दिया। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें कैंसर से मरते हुए देखा। वह एक एक सांस के लिए संघर्ष करती रही और यह संघर्ष उनकी अंतिम सांस के साथ समाप्त हुआ। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा और मैंने अपनी नाकामी को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और ना ही अपनी नाकामी को अपने भविष्य पर कभी हावी होने दिया। उसके बाद से मैंने बहुत से कैंसर के ट्यूमर्स को तुरंत घुलते हुए और ठीक होते हुए देखा। मेरी माँ यीशु के साथ स्वर्ग में आनंद मना रही है, लेकिन मुझे उनकी कमी महसूस होती है। काश वो मेरे साथ अभी होती। दोस्तों, आप अतीत को तो नहीं बदल सकते, परंतु आप अपने भविष्य को आशा से भरने की अनुमति यीशु को दे सकते हैं। जैसे कि आप लूका 6:17-19 में देख सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पास आई। उस भीड़ में संत और पापी सभी पाए जाते थे, कुछ झूठ बोलने वाले, कुछ गाली देने वाले, कुछ समलैंगिक और लालची उसमें पाए जाते थे। जो भीड़ यीशु के पास आई थी, यीशु ने उन सभी को चंगा किया। यीशु ने उन्हें चंगाई देने के लिए कोई मांग या शर्त नहीं रखी। यीशु ने परमेश्वर की भलाई सेतमेत उनके ऊपर खोल दी। जो भी उसके पास आया, यीशु ने सभी पर परमेश्वर की भलाई को बहने दिया। क्या आपको पता है कि क्यों बहुत से मसीही लोग चंगाई नहीं पाते हैं? मेरे विचार से उनके चंगा ना होने का मुख्य कारण है उनका व्यवस्था पर आधारित विश्वास। मेरी माँ को भी इसी कारण चंगाई नहीं मिल पाई थी। व्यवस्था हमारे सच्चे विश्वास को लूट लेती है। लेकिन एक बार जैसे ही हमें परमेश्वर के अनुग्रह का एहसास होता है, तब चंगाई हमारे लिए आसान और हमारी पहुंच में होती है। आइए अब हम चंगाई से आगे बढ़कर पापों की क्षमा और परमेश्वर से मेल मिलाप की ओर बढ़ें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7:14। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। 2 कुरिन्थियों 5:18-19। इस बात में कोई संदेह या शक नहीं कि जब भी बेदारी की बात होती है तो 2 इतिहास 7:14 का सब जगह वर्णन किया जाता है। दुनिया भर में पास्टर और अगुवे अपनी कलीसिया की प्रार्थना में अगुवाई करते हुए पापों का अंगीकार कर रहे हैं और परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनकर एक बदलाव या परिवर्तन के लिए विनती निवेदन कर रहे हैं। उनका मकसद तो अच्छा है, परंतु बेदारी को अनुभव करने का उनका तरीका पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, याद रखें इस सच्चाई हकीकत को कि व्यवस्था हमेशा, यदि शब्द का इस्तेमाल करती है और शर्त को हमारे सामने रखती है, बड़ी भीड़ बेदारी के लिए प्रयासरत है। लेकिन वे इस हकीकत सच्चाई से अनजान हैं कि यीशु मसीह में और उसके द्वारा बेदारी पहले ही आ चुकी है। जो विश्वासी वचन के इन पदों का इस्तेमाल बेदारी के संदर्भ में करते हैं, वे पाप के एक अंगीकार की दूरी पर हैं। वे बेदारी का अनुभव करने से महज एक प्रार्थना की दूरी पर हैं। वे हमेशा यह महसूस करते हैं कि वे बेदारी के मुहाने पर खड़े हैं, परंतु वे बेदारी का कभी भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था हमें बेदारी का अनुभव ना करने देने के लिए ही बनी है। लेकिन जब हम यीशु की ओर देखते हैं, तो हम उस बात की खूबसूरती को देख पाते हैं जो कि यीशु ने हमारे लिए पहले से ही कर दिया है। उसके नाम को पुकारने से पहले, अपने आप को दीन करने से पहले, उसके दर्शन के खोजी होने और अपनी बुरी चाल से फिरने से पहले ही हमारे सभी पापों के लिए एक बलिदान चढ़ा दिया गया और कीमत चुका दी गई है, और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो चुका है। इस मेल मिलाप के द्वारा हमारी पहुंच हर एक अच्छी वस्तु तक और उसकी उपस्थिति की गहराइयों तक हो चुकी है। अब स्वर्ग आपके वास्ते हमेशा के लिए खुल गया है। दोस्तों, हर एक परिपक्व विश्वासी को न सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष प्राप्त कर देने के लिए दीन बनाना, बुरी चाल से फिराना और उसके दर्शन को खोजी बनाना चाहिए, परंतु हर एक परिपक्व विश्वासी को परमेश्वर की बड़ी भलाइयों, रोमियो 2:4 के कारण दीन बनना, बुरी चाल से फिरना और उसके दर्शन का खोजी बनना चाहिए। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। हमारे आत्मिक कार्य परमेश्वर की भलाई के प्रत्युत्तर में एवं परमेश्वर की भलाई से प्रेरित होने चाहिए। यदि आप निराश और हताश हैं, तो विश्वास करें कि शांति के राजकुमार से आपका पहले ही मेल मिलाप हो चुका है और उसकी शांति सेतमेत आपकी ओर आपके लिए बह रही है। यदि दुष्टात्माएं आपको सताती हैं या फिर आप बीमारी से पीड़ित हैं, तो विश्वास करें कि चंगाई और छुटकारा देने वाले से पहले ही आपका मेल मिलाप हो चुका है। आप यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं और परमेश्वर के साथ हुए इस मिलाप के कारण परमेश्वर की भलाई अब आपकी है और आपके लिए उपलब्ध है। यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ आपका कभी न टूटने वाला मिलाप और एकीकरण हो गया है, और इस अद्भुत बात का एहसास और अनुभव करने से बेहतर अन्य कोई आत्मिक आशीष नहीं है। परमेश्वर के साथ ये जो मिलाप और एकीकरण जो आपका हुआ है वो आपकी अपनी आज्ञाकारिता, भक्ति या आपके अपने प्रयास के कारण नहीं, परंतु सब यीशु के द्वारा हुआ है। मैं ताइवान में एक समुद्र किनारे बसे हुए एक गांव में था। मैं एक सेवकाई करने वाले दल के साथ था और उन्हें प्रशिक्षित कर रहा था। मैं उन्हें सिखा रहा था कि सुसमाचार प्रचार करने के साथ साथ बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना एक कारगर तरीका है जिसके द्वारा लोग विश्वास लाते हैं और सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। वहाँ एक महिला ने हमसे प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया। इस महिला के कंधे में दर्द बना रहता था। जैसे ही मैं उसके लिए प्रार्थना करने जा रहा था, मैंने टीम के अपने उन साथियों से कहा कि वे ध्यानपूर्वक देखें कि मैं किस प्रकार से उस महिला के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया। उसके बाद मैंने अपने हाथ उस महिला के कंधे पर रखे, यह कहते हुए पवित्र आत्मा अपनी चंगाई की उपस्थिति को लेकर इस महिला के कंधे में आए। मैं आपकी सामर्थ को इसके शरीर में बहने के लिए कहता हूँ। दर्द इसके शरीर में से अभी निकल जा। इसके कंधे में चंगाई प्रकट हो। उस महिला का सारा शरीर कांपने लगा। परमेश्वर की भलाई की तरंगे उसमें होकर बह रही थी। वह महिला समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसका शरीर कांप रहा है, परंतु उसने खुशी के साथ हमें बताया कि उसका सारा दर्द चला गया। अचानक पवित्र आत्मा मुझे एक दर्शन दिखाने लगा। मैंने दर्शन में उस महिला को एक छोटी सी नाव में बैठे हुए देखा। उस छोटी नाव में एक या दो लोग ही बैठ सकते थे। लहरें उठ रही थीं और वह महिला नाव में खड़ी होकर अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक गोल आकार का बर्तन था जो कि पानी से आधा भरा हुआ था। यह उस बर्तन के समान था जिसमें गोल्ड फिश रखी जाती है, परंतु उस बर्तन में मछली के स्थान पर मैंने उस महिला के हृदय को तैरते हुए देखा। वह महिला उस बर्तन में से अपने हृदय को गिरने से बचाने की कोशिश भी कर रही थी। फिर मेरे जरिए पिता की आवाज़ उस तक पहुंची। मैंने उससे बताया कि परमेश्वर पिता को उसकी परवाह चिंता है। वह उसकी देखभाल करता है और वह चाहता है कि उसका साथी बन जाए और उसके बहुमूल्य हृदय को अपने करुणा में मजबूत हाथों में ले ले। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझे रोक कर कहा, मैं यीशु के पीछे चलना चाहती हूँ, मुझे क्या करना होगा? परवाह करने वाले पिता की आवाज़, उसकी चंगाई की उपस्थिति और सामर्थ उस महिला के लिए बहुत थी। उसने खुशी से अपना जीवन यीशु को सौंप दिया और उसके प्रेम का अनुभव किया। कुछ लोगों का कहना है कि यह तस्वीर हजारों शब्दों से बेहतर कीमती है, पर मैं कहता हूँ कि चंगाई, चमत्कार और छुटकारा जो परमेश्वर देता है, वह परमेश्वर के हृदय और प्रेम को जो आपके लिए उसके दिल में है प्रकट करता है। दोस्तों, अनुग्रह ने मेरे विश्वास को आज़ाद किया है। परमेश्वर की भलाई, प्रेम और सामर्थ को अनुभव करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन को बदल देने वाली उसकी भलाई, प्रेम और उपस्थिति के लिए किसी भी प्रकार की मांग या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर अपनी भलाई और प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने कोई भी मांग नहीं रखी है। मुझे उस महिला के पापों के बारे में सोच विचार नहीं करना पड़ा, संभावित अक्षमशीलता, पैतृक पापों के बारे में भी नहीं सोच विचार करना पड़ा। यीशु ने पिता के प्रति सिद्ध आज्ञाकारिता प्रकट की और ऐसा करके हमारे लिए व्यवस्था की हर मांग को पूरा कर दिया। आप जैसे भी हैं, उसी हाल और अवस्था में अनुग्रह परमेश्वर की भलाई को आपके ऊपर प्रकट करता है। अनंत बलिदान, अनुग्रह का सुसमाचार न्याय, जस्टिस के द्वारा दया, मर्सी की विजय को प्रकट करता है। यदि परमेश्वर पाप का न्याय करने या सजा देने में चूक या गलती करता, तो इसका मतलब यह होता कि परमेश्वर ने अपने न्याय, इंसाफ के अनंत गुण के साथ समझौता कर लिया। यदि परमेश्वर ने सच्चा न्याय, इंसाफ हमें हमारे पापों की सजा देकर किया होता, तो हमारे लिए जो उसका प्रेम और दया है, उस प्रेम और दया का उसे इनकार करना होता अथवा उस प्रेम और दया को उसे छोड़ना पड़ता। पाप का न्याय, इंसाफ करना और मनुष्य से असीम प्रेम करना, ये दोनों ही परमेश्वर के विशेष गुण खूबियां हैं। एक गुण खूबी को परमेश्वर दूसरे गुण या खूबी के लिए कभी नहीं छोड़ त्याग सकता है, परंतु कुछ गुण दूसरे गुणों से कहीं अधिक बड़े, महान और महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि उसका प्रेम, दया और अनुग्रह। सुसमाचार की अद्भुत बात यह कि परमेश्वर ने न्याय, इंसाफ का पूरी तरह से निर्वाह पालन किया और साथ ही साथ हमारे प्रति अनुग्रह और दया को प्रकट किया। हमारे पापों को यीशु मसीह के शरीर पर डालकर उसने हमारे पापों की सजा यीशु के शरीर को दी। यशाया 53:4-10। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। रोमियो 8:3। प्रेम, अनुग्रह और दया परमेश्वर के परम गुण हैं। उसने स्वेच्छा से हमारी सजा को सह लिया ताकि ईश्वरीय न्याय इंसाफ को तृप्त करे, और ऐसा करके उसने अपने महानतम और परम गुणों को प्रकट किया। मनुष्य का सृजन रचना करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उत्पत्ति 2:7। जबकि मनुष्य को पाप से छुड़ाने, आज़ाद करने के लिए, अर्थात पापी मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए परमेश्वर को स्वयं निंदित होना पड़ा, शापित होना पड़ा, मार सहनी पड़ी, कोड़े खाने पड़े और खून की हर एक बूंद को बहाकर मर जाना पड़ा। इब्रानियों 9:22। यदि परमेश्वर चाहता तो इस दुनिया को धोकर साफ कर देता और फिर से इस दुनिया की एक नई शुरुआत करता, परंतु परमेश्वर के हृदय में आपके लिए जो असीम प्रेम था वह इस बात से प्रकट होता है कि उसने स्वेच्छा से आपकी सजा को गले लगाया और आपकी मौत की सजा उसने सह ली। अनुग्रह का सुसमाचार यह घोषणा करता है कि आपके पापों का लेखा दर्ज किया गया था, उनका मूल्यांकन किया गया था और उसकी सजा भी मिली, परंतु उसकी सजा किसी और के शरीर को सहनी पड़ी ताकि हम आज़ाद हो जाएं। आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी पाप का न्याय हो चुका है। यही हकीकत दोष, शर्मिंदगी और अनिश्चितता से आज़ाद करती है। अब आपको अपने पापों के न्याय और सजा से डरने की आवश्यकता नहीं है। विधि सम्मत, लीगलिस्टिक यानी कि नियमों का पालन करने वाले मसीही तर्क, रीजनिंग, इस अनुग्रह की शिक्षा को खतरनाक समझते हैं, क्योंकि वे डर को प्रेम से अधिक बड़ा, महान, प्रेरक, मोटिवेटर या नियंत्रक, कंट्रोलर मानते हैं, जबकि परमेश्वर बिल्कुल इससे अलग सोच रखता है। परमेश्वर इस बात के प्रति आश्वस्त है कि राष्ट्रों और लोगों को मन फिराव की ओर लाने के लिए सबसे सफल उपकरण एवं साधन सतत प्रेम और भलाई है। रोमियो 2:4। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। 1 यूहन्ना 4:17-18। परमेश्वर पिता चाहता है कि आपकी आज्ञाकारिता का हर एक मकसद और भरोसा उसके प्रेम पर आधारित हो। उसने खुलेआम अपने पुत्र को सजा दी ताकि आपका हृदय कभी भी भय से भरकर प्रतिक्रिया ना दे। परमेश्वर आपको आपके पापों के लिए सजा नहीं देगा, क्योंकि यदि वह आपको सजा देता है तो ऐसा करने के द्वारा वह अपने पुत्र यीशु के योग्य बलिदान को नकार रहा होगा या उसका खंडन कर रहा होगा अथवा उसे अस्वीकार कर रहा होगा। एकमात्र पाप जो यीशु के बलिदान के द्वारा नहीं ढका गया अथवा समाधान नहीं किया गया वह अविश्वास का पाप और यीशु को अस्वीकार करने, ग्रहण ना करने का पाप है। आजकल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा अक्सर कयामत और संसार के विनाश और अंत की भविष्यवाणियां की जाती हैं, परंतु उन भविष्यवाणियों के ठीक उलट विपरीत परमेश्वर संसार का उनके पापों के कारण न्याय नहीं कर रहा है और ना ही सजा दे रहा है। 2 कुरिन्थियों 5:18-19। जब यीशु अपने चेलों के साथ समरिया के एक गांव में गया और उस गांव के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, तब यीशु के चेलों ने अपनी समझ के अनुसार उस गांव के लोगों के लिए एक सजा ठहराई। चेलों ने सोचा कि उन लोगों के लिए उपयुक्त एवं सही सजा यह है कि स्वर्ग से आग गिरकर उन्हें भस्म करे। यह देखकर उसके चेले याकूब और यहुन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। लूका 9 का 54 और 56। यीशु ने उन्हें डांटा और उनके मकसद को शैतान की ओर से प्रेरित बताया। यीशु मनुष्य को बचाने के लिए आया, ना कि उनका नाश करने के लिए। और यीशु आज भी बदला नहीं है। इब्रानियों 13:8, एक दिन आएगा जब यीशु जगत का न्याय करेगा। उस दिन सब लोग यीशु के सामने खड़े होंगे, परंतु उस दिन के आने तक परमेश्वर जगत के पापों का न्याय नहीं कर रहा है। मनुष्य का एकमात्र पाप जिसका न्याय के दिन न्याय किया जाएगा, वह है अविश्वास, यीशु पर विश्वास न करने का पाप, अथवा यीशु और उसके बलिदान का तिरस्कार करने का पाप। मरकुस 16:16, यीशु पर भरोसा रखने वाले विश्वासी के रूप में आप अभी और अनंत काल के लिए पाप के दोष से एवं दंड से पूरी तरह आजाद हैं। पूरा किया हुआ कार्य। सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा पूरा किए गए कार्य का संदेश है, जो कि मनुष्य के लिए अर्थात परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए शर्त रहित प्रेम और भलाई को ठोस तरीके से प्रकट करता है। सुसमाचार का संदेश यह नहीं है कि परमेश्वर क्षमा करेगा, चंगा करेगा और छुटकारा देगा, परंतु वह तो आपको क्षमा कर चुका है, चंगा कर चुका है और छुटकारा दे चुका है। पिता ने आपसे और संसार से मेल मिलाप कर लिया है, 2 कुरिन्थियों 5:18-19। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? रोमियों 5:8-10। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के विरोधी और शत्रु थे, तभी परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप अपने आप से कर लिया। एक विरोधी या शत्रु पश्चाताप नहीं करता है, प्रार्थना उपवास नहीं करता है और बुराई से फिरकर आज्ञा पालन नहीं करता है। परमेश्वर ने अपने महान प्रेम को हमारे प्रति ऐसे प्रकट किया कि जब हम परमेश्वर के विरोधी और शत्रु थे, उसी समय उसने हर भली वस्तु की हम पर वर्षा कर दी। यह सच्चाई विधि सम्मत अर्थात आज्ञाओं के पालन करने की सोच पर प्रहार करती है, और इस सोच पर भी घातक प्रहार करती है कि हमारे भले कार्यों के कारण परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर के प्रेम के पात्र बनने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप कर सकें। आप परमेश्वर को क्षमा करने, चंगाई देने, आशीष और छुटकारा देने के लिए विवश मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सब परमेश्वर आपके लिए पहले ही कर चुका है। नीचे दिए गए चंगाई और छुटकारे के पदों पर ध्यान दें, जो कि भूतकाल पास्ट टेंस में है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। कुलोसियों 1:13, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 1 पत्रस 2:24, विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाना। जो भी आपकी आत्मा, प्राण और शरीर के छुटकारे के लिए आवश्यक था, सब कुछ भले पिता ने पूरा कर दिया, बिना आपकी स्वेच्छा, फ्री विल को नियंत्रित किए हुए। अनुग्रह के सुसमाचार के प्रति हम या तो विश्वास प्रकट कर सकते हैं या फिर अविश्वास की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। विश्वास महज उस बात कार्य पर भरोसा करना है जो कि परमेश्वर आपके लिए कर चुका है। जो कुछ भी परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारे लिए किया है, उसे ग्रहण करने की आत्मिक प्रतिक्रिया ही विश्वास है। इफिसियों 2:8, विश्वास परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान की गई पापों की क्षमा अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य के पापों की क्षमा को ग्रहण करना है और स्वीकार करना है। विश्वास यीशु के घाव के द्वारा प्रदान की गई चंगाई को ग्रहण करना है। विश्वास अंधकार के वश में प्रदान किए गए छुटकारे और आज़ादी को ग्रहण करना है। जो आशीषें परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराई हैं, विश्वास उनका लुफ्त उठाता है। यीशु के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के कराए गए मेल मिलाप का विश्वास आनंद लेता है। नीचे यूहन्ना 1:12 में देखें कि किस प्रकार से विश्वास का सीधा संबंध ग्रहण करने से है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के अनुग्रह की भलाई बहुत गहरी और असाधारण है। चाहे आप अनुग्रह की सच्चाई को जानने की भूख इच्छा रखते हैं या फिर अनुग्रह को समझ पाना आपको कठिन जान पड़ता है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अनुग्रह पर आधारित मेरी पुस्तक प्राप्त करें, पढ़ें और जानें कि किस प्रकार से अनुग्रह आपके आत्मिक जीवन को मौलिक रूप से जड़ से बदल सकता है। मेरी पुस्तक का नाम है अनुग्रह परमेश्वर के हृदय का प्रकटीकरण, ग्रेस गॉड्स हार्ट अनवील्ड। मेरी उपरोक्त पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी के लिए amazon.com पर खोजें। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए व्यवहारिक प्रश्न। पहला, इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपके अनुसार अनुग्रह की परिभाषा क्या थी? परमेश्वर के अनुग्रह को समझने और जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरा, इस अध्याय को पढ़ने से पहले क्या कुछ ऐसी शर्तें थीं जिन्हें आप सोचते थे कि आप परमेश्वर से आशीष, क्षमा और चंगाई प्राप्त करने से पहले पूरा करना आवश्यक है? तीसरा, परमेश्वर को लेकर आपका जो नजरिया था, क्या वह ज्यादा व्यवस्था पर आधारित था, मिश्रित था या फिर अनुग्रह पर आधारित था? क्या इस अध्याय ने सुसमाचार को लेकर पहले जो नजरिया आपका था उस नजरिया को बदला है? यदि हाँ तो कैसे? चौथा, किस प्रकार से वाचाओं की भिन्नता की समझ की कमी के कारण बहुत से लोग परमेश्वर की भलाई को ग्रहण कर पाने में नाकाम हो सकते हैं? आत्मिक जीवन में उस समय के बारे में सोचें जब आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से प्राप्त नहीं हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है कि अनुग्रह की समझ की कमी के कारण आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं प्राप्त हो सका? और क्या आप व्यवस्था के अनुसार उन प्रार्थनाओं का उत्तर अर्जित करने, कमाने या हासिल करने के लिए प्रयत्नरत थे? पांचवा, क्या आप अपने पापों की सजा के भय से संघर्ष करते हैं? क्या पाप का दोष, ग्लानि और लज्जा आपके आत्मिक जीवन की राह में आपका शत्रु बना हुआ है? किस प्रकार से एहसास कि यीशु ने आपके पापों को और आपकी सजा को ले लिया आपको इस भावनात्मक संघर्ष से आजाद करता है? छठवां, किस प्रकार से इस बात को जानने से आपका हृदय शांति और सुकून महसूस करता है कि परमेश्वर का सारा कार्य पूरा हो चुका है? सातवां, आपके अनुसार विश्वास की परिभाषा क्या है? क्या आप परमेश्वर से आशीष पाने के लिए विश्वास को प्रेरक समझते मानते थे, या क्या आप मानते थे कि हमारा विश्वास परमेश्वर अपने प्रेम और भलाई की प्रतिक्रिया है? आठवां, क्या अनुग्रह का सुसमाचार व्यवस्था आधारित सुसमाचार की तुलना में खोए हुओं को जीतने में अधिक प्रभावी और कारगर है? खोए हुओं को जीतने और प्रभु के पास लाने में किस प्रकार से यह अधिक प्रभावी है?